ॐ शांति, ॐ शांति। बाबा जो हम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसका लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। पूछते हैं ना, आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या बताते हैं कि मनुष्य से देवता बनना। अब वो तो हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उसके पहले क्या बनना है, तो बाबा कहते हैं तुम्हें फरिश्ता बनना है। वो भी बहुत बड़ा लक्ष्य है, पर उसके पहले क्या बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। पर उसके पहले क्या करना है, कैसे बनेंगे संपन्न और संपूर्ण? तो कई बच्चे पूछते हैं ना कि हम क्या पुरुषार्थ करें, बहुत पूछते हैं क्या पुरुषार्थ करें। तो बाबा छोटी छोटी बातें भी बताते हैं, लक्ष्य में ये छोटी बातें हैं, तब फिर बड़ी बात पर आएंगे ना। कहीं भी जाना होता है तो वाया तो होता ही है ना, तो छोटी छोटी बातों का लक्ष्य पहले हम बुद्धि में रखते हैं और उस अनुसार लक्षण धारण करते हैं, तब उस बड़ी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो कौन सा छोटा छोटा लक्ष्य बाबा हमें देते हैं, बच्चे किसी को दुख मत दो, बच्चे सदा खुशी में रहो, बच्चे हाँ श्रेष्ठ कर्म करो, बच्चे सबको बाप का परिचय दो, बच्चे 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 कह करके बाबा हम बच्चों से सब कुछ करवा देते हैं ना, वो भी इतना प्यार से। तो बाबा कहते हैं मैं तो मेरे पास जो कुछ है वो तो मैं सब आपको दे देता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ तो वो ज्ञान पूरा आपको दे देता हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ तो मैं पूरा प्रेम तुम बच्चों पर लुटाता हूँ। तो जो तुमको बाप से मिला है वो फिर औरों को देना है, वो केवल अपने तक तो नहीं रखना है ना। तो आज बाबा ने वो छोटे छोटे लक्ष्य बताए हैं, वो बहुत जरूरी है अगर हम बहुत बड़ा मर्तबा पाते हैं। स्टूडेंट भी दो विशेष काम तो करता ही है, पहले तो जो टीचर पढ़ाता है उस पर पूरा ध्यान देता है, और दूसरा टीचर को याद भी करता है। टीचर को याद किए बिना कैसे वो पढ़ाई भी पढ़ेगा, टीचर ने क्या सुनाया, टीचर ने क्या सुनाया। तो पढ़ाई भी जरूरी है, योग भी जरूरी है, जो पढ़ाता है उसके साथ योग भी हो, फिर धारणा भी बहुत जरूरी है, फिर सेवा भी बहुत जरूरी है। तो चारों विषयों पर हमारा पूरा ध्यान हो, लेकिन जो धारणा है हमारी मेन, उस पर तो बाबा कहते हैं बहुत बहुत अटेंशन हो। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 20/1/2025 है। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सत्युगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। राजाई लेनी है तो ज्ञान की धारणा के साथ साथ याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। पवित्रता का बल नहीं होगा तो भी कहाँ उच्च पद पाएंगे, और याद का बल भी नहीं होगा, ज्ञान का बल भी नहीं होगा तो कैसे उच्च पद पाएंगे। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर, पहले सदा खुशी में रहना, हमारी खुशी कम न होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं शरीर छूट जाए पर खुशी न जाए, तो सदा खुशी में रहना। दूसरा, बहुत बहुत मीठा बनना, ये भी कितना बड़ा लक्ष्य है। हमारे बोल कैसे हो, शब्द क्या निकले, हाँ तो बहुत बहुत मीठा बनना। और तीसरा सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है। वो इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। जब हर एक अपने अंदर देखे खुशी में रहता हूँ सदा, बहुत मीठा हूँ, हाँ सबको प्रेम से चलाता हूँ, तो बाबा कहते हैं तब हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। प्रश्न दूसरा भी है, जिनके कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? अब कर्म तो श्रेष्ठ करने हैं, लेकिन हम कर्म श्रेष्ठ कर रहे हैं उसकी निशानी क्या होगी? उन उत्तर है, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। अगर कहते ना फलाने ने हमको दुख दिया, माना उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है ना, तभी तो दूसरे को महसूस हुआ कि इसने मुझे दुख दिया है। तो उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे, बाबा को पूरा फॉलो करते होंगे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे। फिर उस गीत के अंत में आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। परमात्मा अपना वायदा सुनाते हैं कि मैं आता हूँ जब जब धर्म की ग्लानि होती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अब ये मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा। जैसे ओम शांति दोनों बाप कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे भी दोनों बाप कहते हैं। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इनको कहा जाता है, किसने ये दो कहा मीठे मीठे बच्चे, किनको इनको कौन क्या कहेंगे? इनको कहा जाता है बाप और दादा, क्योंकि दोनों कहते हैं। दादा है साकारी, अभी ये गीत तो भक्ति मार्ग का है, बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है, अब हमको पावन बनना है योग व याद से। कैसे बनना है पावन? योग व याद से। याद और नॉलेज ये तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे, जिस जो टीचर है वो भी बैरिस्टर होगा, वकील ही वकील को पढ़ाएगा ना, जिसने वकालत की नहीं है वो कैसे पढ़ाएगा और वकील बनाएगा? तो बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे, टीचर को याद करेंगे और जब वो पढ़ाएंगे वो उसको भी याद करेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। याद करना अपने टीचर को और वो पढ़ाई पढ़ना, ये दोनों बल है। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो ये है नई बात, ज्ञान भी नया, पढ़ाने वाला भी नया, तरीका भी नया, ये है नई बात। उस योग और ज्ञान के ज्ञान से बल मिलता है हद का, और यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, वो दे रहा है ज्ञान और वो कह रहा है मुझे याद करो। तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूँ, तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन ये सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वो भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है, और एक तो नॉलेज को धारण करना है और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। बिना योग और पवित्रता के यहाँ राजाई नहीं मिलेगी। ज्ञान तो भी दे रहे हैं, योग भी सिखा रहे हैं और पवित्रता की शक्ति भी हमें दे रहे हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो, बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते हो। कहां स्वर्ग की राजाई थी और कहां सब कंगाल बन गए। तो 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते हो। ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है। ऊंच से ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच से ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं, अभी हम जैसे कि कहां बैठे हैं, हम सब जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। ये बाप और दादा का घर है मधुबन। बाप और दादा के घर में बैठे हैं। ये दादा माना ब्रह्मा बाबा, बड़ा भाई कहेंगे ना, दादा को बड़े भाई को दादा कहते हैं। ये दादा ब्रह्मा माँ भी है, ब्रह्मा माँ भी है। वो बाप तो अलग है, बाकी ये माँ भी है। वो लौकिक बाप जो होता है वो बाप ही होगा, वो माँ नहीं बनती। हाँ, माँ बनता नहीं है, लेकिन ये जो बाप है हमारा अलौकिक बाप, ये माँ भी है। बाकी ये माँ भी है, मम्मा भी माँ है। तो कितनी माँ हो गई हमें, बहुत कई बताते हमारी कितनी माँ है, 5 माँ बताते। भारत माँ भी है, भारत माता भी है, लौकिक भी है, ये बाप भी है, माँ भी है, ये माँ भी है। तो बाबा कहते हैं वो बाप तो अलग है, बाकी ये माँ भी है। परंतु ये मेल का चोला होने कारण फिर माता मुकरर की जाती है, इनको भी एडॉप्ट किया जाता है। ये माँ को भी एडॉप्ट किया जाता है, उनसे फिर रचना हुई है। रचना भी है एडॉप्टेड, सारी रचना एडॉप्टेड बैठी है ना माता पिता की। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने, ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया। ब्रह्मा को तो अडॉप्ट किया ही ब्रह्मा मुख द्वारा, लेकिन बाबा को ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया। तो कैसे ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, कैसे किया, प्रवेश करके। इनको अडॉप्ट किया प्रवेश करके, और बाकी सबको अडॉप्ट किया मुख की संतान बनाई। तो प्रवेश करना व अडॉप्ट करना ये भी एक ही बात है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं। तो खुद को भी बनना पड़े, भारत को बना रहे हैं पर पहले तो खुद को बनाना पड़े। तो खुद को ही बनना पड़े, अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। मैं जो कर रहा हूँ वो तुमको भी वही करना है, सब तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं दे सकता, उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है। अब क्या जांच करनी है कि मनसा वाचा कर्मणा हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, और कैसे दुख देते पता है, पता भी नहीं चलता है। परंतु ध्यान अगर रहेगा तो बाबा कहते हैं तो फिर दुख नहीं देंगे। मनसा वाचा कर्मणा हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसको दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को ये बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है क्या कि हम अपने घर जाएंगे फिर नई दुनिया में जाएंगे। बस यही बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में हो, घर जाएंगे फिर नई दुनिया में जाएंगे। जब अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, वापिस घर जाकर फिर नंबर वार पाठ बजाने आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे इससे सिद्ध होगा कि कल्प कल्प भी आया, अब ऐसे ही पुरुषार्थ करेंगे। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते। हाँ, बाप के सिवाय इस नॉलेज को कोई नहीं जानते। ऊंच से ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है, दिल्ली में है ये सब तीनों। त्रिमूर्ति नाम, त्रिमूर्ति रास्ता, त्रिमूर्ति हाउस, ये त्रिमूर्ति का नाम है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। तो इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे ये वर्षा लेते हैं, लक्ष्मी नारायण ये वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा ये दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा। याद में रहकर ज्ञान सुनाएंगे तो वो तीर अच्छा असर करेगा, उसमें शक्ति आती जाएगी, उस तीर में शक्ति आती जाएगी, वगैरह जोहर भरेगा। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात यही रखनी है, मूल फिक्रात, मूल चिंता यही हमारी होनी चाहिए, क्या कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। मन मना भव का अर्थ भी ये है, सतो प्रधान बनने के लिए उनको याद करना पड़े तो मन मना भव का यही अर्थ है, मुझे याद करो। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मन मना भव का अर्थ क्या है, ये किसने कहा कि मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है ये, वो तो प्रिंस है श्री कृष्ण, ये तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावनहार कौन है, ब्रह्मा द्वारा कराने वाला कौन है स्थापना, तो करण करावनहार कौन है ये भूल गए हैं। उनके लिए फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। हाँ, सब में वही है, वही वो सब ब्रह्मा विष्णु शंकर ये ईश्वर के रूप है तो सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान, क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है ना, ऐसे नहीं कि सब में ईश्वर है, तो इसीलिए फिर बाबा कहते इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको पांच विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे थे, रावण ने बेसमझ बना दिया था ये ज्ञान जब तक नहीं था, बरोबर हम पहले भी ऐसे ही थे। हाँ हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, इतने अधम गति को पाया है तमो प्रधान बन गए हैं, पर पहले हम ही उत्तम थे, उत्तम थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली। अब बाबा कहते ये भी ठीक है, बंदर सेना, हाँ कौन है बंदर सेना, हाँ पहले तो बंदर ही थे ना, बंदर समान ही थे, तो ये भी ठीक है। तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे, अभी महसूसता आती है कि हम कैसे बंदर मिसल थे, अभी महसूसता आती है कि ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं, ये है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। जंगल तो बहुत बड़ा होता है, हाँ माइलों में होता है, माइले कितने, चलते जाओ जंगल ही जंगल। जंगल तो बहुत बड़ा होता है, गार्डन तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि बगीचे के लिए तो मेहनत करनी पड़ती, जंगल तो अपने आप बढ़ता जाता है। तो गार्डन तो बहुत छोटा होता है, गार्डन बड़ा नहीं होता है, बगीचा बड़ा नहीं होता है। बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय ये बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिसमें ज्ञान और योग नहीं है, जिसमें ज्ञान और योग नहीं है, सेवा में सर्विस में तत्पर नहीं है, उनका क्या हाल होगा। न ज्ञान योग है, न सर्विस में तत्पर है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती है, खुशी भी नहीं रहेगी उसको, अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है, समझते हैं। इसने आगे जन्मों में दान पुण्य किया है तभी अच्छा जन्म मिला है। सब सुख है इस जन्म में, इसका मतलब पूर्व जन्म में इसने बहुत दान पुण्य किया है, सुख दिया है, तब इस जन्म में भी इसको बहुत सुख है। तो तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भगत होते हैं, समझेंगे हम भक्त, अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे। इस जन्म में बहुत भक्ति की है, अगर वो शरीर छोड़ता है तो अगला जन्म जो मिलेगा वो भी किसी बहुत बड़े भक्त के घर में जन्म मिलेगा, फिर बचपन से ही भक्ति करनी शुरू कर देगा। तो घर तो बड़े अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। तुम जानते हो अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्य के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पतित तो बनना ही है, पांच विकारों की सब में प्रवेशता है। भल दान पुण्य आदि करते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल तो मिल जाता है, वो तो मिलेगा। दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते रहते हैं ना। भले दान पुण्य करेंगे, उस दान का उनको पुण्य मिलेगा, लेकिन पाप भी साथ साथ करते रहते हैं। रावण राज्य में जो भी लेन देन है वो है ही पाप की लेन देन, सारी इस रावण राज्य में पाप की है। देवताओं के आगे कितनी स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। पुजारी होंगे नहा धोकर के, बिल्कुल स्वच्छ होकर के आएंगे ना, पूजा करते हैं मंदिर में, उनको पूजा का पता है, लेकिन बाबा कहते हैं विकारी तो है सब, पाप तो करते रहते हैं। तो स्वच्छ बनकर आते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। जिनकी पूजा कर रहे हैं वो कौन थे, कब आए, वो भी कुछ नहीं जानते। तो बेहद के बाप की भी कितनी ग्लानी कर दी है। वो समझते हैं ये तो महिमा करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो सर्वशक्तिवान है, सब जगह है, क्या क्या महिमा करते हैं भक्ति मार्ग में। परंतु बाप कहते हैं यह इनों की है उल्टी मत। अब सर्वशक्तिवान तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह मुर्दे को जिंदा करेगा, ऐसी शक्ति कोई भगवान नहीं दिखाते, पर दुनिया को बदलने की शक्ति जरूर भगवान में है। परंतु बाप कहते हैं यह इन्हों की उल्टी मत है। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, हम उनको ही याद करते हैं। यही हम सबसे पहले परमात्मा की महिमा सुनाते हैं कि ऊंच से ऊंच एक बाप ही है, तो उनकी महिमा हम सुनाते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, लक्ष्मी नारायण। ये राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है कि ऐसे राजाई लेनी है। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है, भगवान के आगे तो वो बच्चा ही है ना, श्री कृष्ण वो तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं है, शिव को अपनी देह नहीं है, ये मैं लोन पर लेता हूँ। शिव बाबा खुद कहते हैं ये ब्रह्मा तन मैं लोन पर लेता हूँ, इसीलिए इसको बाप दादा कहते हैं। वो है ऊंच से ऊंच निराकार बाप, रचना को रचना से वर्षा मिल न सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से ही वर्षा मिलता है, नहीं बाप से। अभी भाई भाई को कहे तो मुझे वर्षा दो, अब बाप भाई कहेगा ये तो मेरी कमाई है, मैं तुमको क्यों दूं, तुम बाप से लो, ये जो मैं कमाई करता ये मेरे बच्चों के लिए है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता है, रचना को रचना से वर्षा मिल न सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को भी नहीं मिलता है। अभी थोड़ा थोड़ा हाँ देते हैं, परंतु बच्ची तो कहेंगे तुम तो पराया धन हो, ससुराल में जाएंगे तुम वहां लेंगे, तो बच्ची को तो मिल न सके। अब बाप ने समझाया है तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो, शिव बाबा के सब बच्चे हो और ब्रह्मा के सब बच्चे बच्चियां हैं। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। ये बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, इनके कोई शास्त्र तो बन न सके। जो सम्मुख हमको बाप बैठ समझाते हैं इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है, क्योंकि समझाया और पद दिला दिया फिर वर्षा मिल गया, फिर शास्त्र क्यों बनेगा, इसको पढ़ेंगे क्यों। तो बाबा कहते इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते, भले तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, बहुत लिटरेचर किताबें तो कितनी छपती है हमारी, तो लिटरेचर छपाते हो फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा न सके। ऐसे भले किताब ले जाते हैं पढ़ते भी होंगे, लेकिन जब तक वो सेंटर पर न आए कोर्स न करे तब तक थोड़ी वो कुछ समझ पाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा न सके, बिना टीचर किताब से कोई समझ न सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स, हाँ सब कौन बैठे रूहानी टीचर्स, 7 दिन का कोर्स किया वो पढ़ा सकता है, पर पूरा पहले समझे तो वो क्यों नहीं पढ़ा सकता है। तो इसलिए तुम हो रूहानी टीचर्स, बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं तो तुम बच्चों को तो सदैव खुशी में रहना चाहिए। थोड़ा भी मन उदास हो जाए तो कैसे खुशी में लाओगे, कुछ न कुछ स्वमान याद करो, मैं कौन। हाँ तो बाबा कहते खुशी में आ जाएंगे। तो तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है। ये तो कितनी बड़ी खुशी की बात है, भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया है। वही हमको टीचर बन करके पढ़ाते हैं, ये फिर डबल खुशी। भगवान ने हमको अपना बनाया है और वही टीचर बन के हमको पढ़ाते हैं, और सच्चा सतगुरु भी वही है जो हमको साथ ले जाते हैं, तो और नशा खुशी हमारी बढ़ती जाएगी ये सब सोचकर। तो सच्चा सतगुरु भी है साथ में ले जाते हैं, सर्व का सदगति दाता एक है, ऊंच से ऊंच बाप ही है जो भारत को हर 5000 वर्ष के बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं, तब आ रही है शिव जयंती, 26 फरवरी को शिव जयंती है। तो बाबा कहते हैं उनकी शिव जयंती मनाते हैं, सिर्फ वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए, केवल शिव बाबा की जयंती नहीं है, कितनों की जयंती साथ में। ब्रह्मा की भी जयंती है, विष्णु की भी जयंती है, साक्षात्कार तो विष्णु का किया ना बाबा ने, शंकर की भी जयंती है, विनाश का काम भी शुरू हो जाता है, फिर हम ब्राह्मणों की भी जयंती है, शिव जयंती हमारे लिए तो सबसे बड़ा त्योहार है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो कितने सबकी जयंती एक साथ हो जाती है। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। क्योंकि श्री कृष्ण ये सब कैसे कहेगा, जितनी बातें गीता में वर्णन है ये तो परमात्मा के ही महावाक्य हो सकते ना। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। पर ये भी ड्रामा में नोंद है, क्यों ये ऐसी भूल हुई, किसने भूल कराई। हाँ, तो बाबा कहते ये सब ड्रामा में नोंद है, हम किसको दोष देंगे, ये भी ड्रामा में नोंद है, ये भूल फिर भी होने वाली है, फिर अगले कल्प में ऐसी ही भूल होगी। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। हाँ, कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है ना, कुछ भी होता है तो कहिए भाई किसने कराई, कैसे हुआ, कौन निमित्त बना, वो तो बताते ही तो है ना। तो अभी इतनी सारी जो भूल हुई है तो ये किसने कराई, अब एक व्यक्ति थोड़ी होगा, कहिए भाई व्यास भगवान ने की, लेकिन व्यास भी कौन, कितने व्यास हो जाते हैं, जो भी टीचर है वो व्यास है, जो कुछ लिखता है वो व्यास बन गया, तो एक व्यास थोड़ी होगा। तो इसलिए बाबा कहते किसको दोष देंगे, ये ड्रामा अनुसार हुआ है, क्योंकि गिरना है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है, ये भूल फिर भी होने वाली है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। हाँ, सारा खेल ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे सुख धाम शांति धाम को याद करो। बाबा सब बातें सुना के फिर कहेंगे बाप अब सब सार में चले जाओ, बस सुख धाम शांति धाम को याद करो। अलफ और बे कितना सहज है, तुम किसी से भी पूछो मन मना भव का अर्थ क्या है, देखो क्या कहते हैं, पूछो, देखो गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, इसका अर्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं देखो क्या कहते हैं, फिर बोलो भगवान किसको कहा जाता है, ऊंच से ऊंच भगवान है ना। तो अगर वो कहे कि हाँ मन मना भव का अर्थ है कि मन मेरे में लगाओ, अब ये किसने कहा मन मेरे में लगाओ, भगवान कौन है, तो बोलो भगवान किसको कहा जाए, तो ऊंच से ऊंच तो भगवान है ना, फिर उनको सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे, वो तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है, तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए, ऊंच से ऊंचे शिव। हाँ, केवल शिव बाबा का नहीं, बाबा ने का फ्लैग में झंडा जो है हमारा उसमें शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी होना चाहिए। फिर बाबा कहते गोला भी होना चाहिए, झाड़ भी होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मुख्य चित्र है। तो बाबा कहते हैं तो तुमको वो तो सबका बाप है, अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है तो तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए, ऊंच से ऊंचे शिव, फिर सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊंच से ऊंचे शिव बाबा वो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो। हाँ, उनको कहो जो उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो, जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वो भी शिव को तो मानते हैं, बाकी हाँ देवताएं ये भगवान है ये आर्य समाजी नहीं मानते, वो देवता मानते हैं, परंतु परमात्मा तो वो एक ही मानते हैं, वो निराकार। तो बाबा कहते इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वो भी शिव को मानते हैं, तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला दूसरी तरफ झाड़, तुम्हारा झंडा वास्तव में ये होना चाहिए, बना तो सकते हैं ना, बन तो सकते हैं ना, झंडा चढ़ा दो जो सब देखे। सारी समझानी इसमें है, त्रिमूर्ति गोला झाड़ में सारी शाम समझानी है ज्ञान की। कल्प वृक्ष और ड्रामा इनमें तो बिल्कुल क्लियर है, सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब आएगा। चक्र से भी मालूम पड़ेगा तो झाड़ से भी मालूम पड़ेगा हमारा धर्म कब आएगा, सब धर्म वाले देखेंगे तो आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे कि हमारा धर्म स्थापक कब आया था, उस अनुसार कितने जन्म लिए होंगे, आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है, क्राइस्ट कब आया, इतना समय वो आत्माएं कहाँ रहती है। अब क्रिश्चियन धर्म की जो आत्माएं हैं, जब तक क्राइस्ट ना आए तब तक क्रिश्चियन धर्म की आत्मा यहाँ थोड़ी होगी, वो तो परम धाम में होगी। तो बाबा कहते ये पूछ सकते हो तब तक उस धर्म की आत्माएं कहाँ होती है, तो क्राइस्ट कब आया, इतना समय वो आत्माएं कहाँ रहती है। जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में है, हम आत्माएं रूप बदल कर यहाँ आकर साकार बनते हैं। आत्मा का रूप बदलकर ये देह साथी धारण करके बाबा कहते हैं साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल साकार में आओ, गीत में है रूप बदल कर आ जा रे, तो रूप बदल कर आ जाओ। ये किसको कहा, शिव बाबा को कहा। आएंगे तो यहाँ ना सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे, अब सूक्ष्म वतन में आके कैसे स्थापना करेंगे, यहाँ ही स्थापना करनी है ना। जैसे हम रूप बदल कर पाठ बजाने आते हैं, आत्मा आती है निराकार से साकार बनती है, रूप बदल कर आती है, आप भी आओ फिर से आकर राजयोग सिखाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का, ये तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को शौक चाहिए ना, शौक चाहिए किस बात का, धारणा कर औरों को करानी चाहिए, उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेवन बनाते हैं, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप भी बनानी चाहिए, बनाई थी ये सब बाबा ने जो कहा सब बनाया हुआ, त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप भी बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी, दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये काम कर सकते हैं। बाबा के बच्चे दिल्ली में उस समय बहुत, ब्रिजमोहन भाई तो वहीं थे ना, तो और भी थे कई भाई उनके साथ, ये पढ़े लिखे हैं तो दिल्ली में ये काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है, पहले दिल्ली को परिस्थान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। ये तो सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, फिर वही बात, क्या सदा खुशी में रहना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। तीसरा, सबको प्रेम से चलाना है, खुशी में रहना है, मीठा बनना है, प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तक बाबा किसी से भी सेटिस्फाई नहीं, अभी तक कोई बना नहीं है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है, धीरे धीरे चढ़ते तो हो ना, बाबा के बच्चे बने तो धीरे धीरे चढ़ती कला होती जाती है। तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इनो की नॉलेज तो बड़ी है। हाँ, छोटी मोटी नॉलेज नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान है इनके पास। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है, मेहनत बिगर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी, बिना मेहनत के राजधानी ऐसे ही थोड़ी छू मंतर से आ जाएगी। तो ऐसे थोड़ी राजधानी स्थापन होगी, चढ़ते हैं गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। नॉलेज तो सहज है, बच्चों को बहुत मीठे ते मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, ये लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, कैसे हमें बनना है लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो तो पता चल जाएगा हमको कैसे मीठे बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की ये एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला है भगवान। भगवान हमको पढ़ाकर इतना ऊंच लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है, इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। कितना काम मिल गए बाबा से। वरदान, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण ही रहना तो प्रवृत्ति में है ना। तो जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण ही उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो, अभी सबको अगर ऑर्डर मिल जाए कि चले आओ तो चले आएंगे। अभिभावक है सब आ जाओ यहाँ के रहो तो चले आएंगे। क्या करेंगे, चले आएंगे, देखो हाथ उठा रहे, चले आएंगे। रोज कोई ना कोई आता है, हमें कहता है बहन जी हमको यहाँ रख लो ना। अरे भाई ऐसे कैसे रखेंगे, वो माताएं भी कहते हमको यहाँ रख लो ना। हम कहते नहीं, सेंटरों पर जाओ, सेंटर पर रखेंगे, यहाँ नहीं रखते हैं किसी को। तो देखो बहुत कहते हैं हमको यहाँ रख लो ना, पर जब ऑर्डर होगा तब देखो निकल सकते हैं, फिर वो खींचेगा। तो बाबा कहते हैं मोह के कारण नहीं, तो हाँ, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए। बिगुल बजे, हाँ बिगुल बजाते ना इतना बड़ा, तो बिगुल बजे कि चले आओ तो फटाफट सब चले आएंगे और समय नहीं लगना चाहिए। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। ऑर्डर आया और तुरंत चले आए बिना सोचे, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ क्या होगा, और जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण भी जरूर होगा क्योंकि बंधन है। लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा नंबर आगे राजधानी में? स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिपक्व बनाने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की वो सब समाप्त हो जाएगी। वो सब समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, ये छोटी छोटी जो धारणाएं बाबा बताते हैं वो भी कितनी महत्व की है, तभी तो आगे बढ़ेंगे, देवता बनेंगे। चलो, डबल विदेशी बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम देंगे आपको।